ओम शांति। किसी एक पार्टी में एक व्यक्ति एक बूढ़े से व्यक्ति को देखता है और उसके पास जाकर कहता है कि आपने मुझे पहचाना। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं, आप कौन हो? वो कहता है, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपका विद्यार्थी हूं। क्या आपको याद है मैं आपकी कक्षा में था? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, आप कौन हो? वो कहता है, तीसरी चौथी कक्षा में जब मैं था तब आप हमको पढ़ाया करते थे। तो टीचर कहता है, अच्छा। वो व्यक्ति कहता है कि आपको याद है कि मैंने एक घड़ी चोरी की थी? वो टीचर कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कौन सी घड़ी? वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको बताता हूं, एक बार जब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे और एक क्लास का विद्यार्थी बहुत सुंदर घड़ी लेकर आया और मुझे वो घड़ी चाहिए थी और इसलिए मैंने उसकी वो घड़ी चुरा ली, और जब मैंने वो घड़ी चुराई तो वो लड़का रोते रोते आपके पास आया और फिर आपने सबसे पूछा कि किसने घड़ी ली है, तो सब चुपचाप थे। फिर आपने कहा था कि मैं सबकी तलाशी लूंगा और सबको दीवार की तरफ खड़ा किया और आपने सबके जेब तलाश किए, और जब आपने मेरी जेब में हाथ डाला था और वो घड़ी आपको मिली, आपने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप आपने वो घड़ी निकाल ली और बाद में उस लड़के को वो घड़ी दे दी बिना ये बताए कि यह घड़ी किसकी जेब में से मिली। मैं तो इतना डर गया था कि आज सबके सामने मेरी बदनामी हो जाएगी, सब लोग मुझे चोर कहेंगे, सब लोग मुझे झूठा कहेंगे यदि आपने वो बात कह दी होती, और ये कलंक मेरे जीवन भर मेरे साथ चलता। पर आपने चुपचाप मेरे जेब से घड़ी निकाली और बाद में उस लड़के को दे दी, इसलिए मुझे आप अब तक याद हो, इसलिए मैं आपको भूला नहीं हूं। वो शिक्षक, वो टीचर, वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किसके जेब से घड़ी निकाली थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी जब मैं हरेक के जेब की तलाशी ले रहा था। तो वो व्यक्ति अपने बुजुर्ग टीचर की यह बात सुनकर दंग रह जाता है, सोचता है ये कैसी मैच्योरिटी है कि इन्होंने मेरी गलती को केवल छिपाया नहीं, इनको खुद भी नहीं पता कि वो किसने किया था। बाबा कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे कैसा हो जाए, परिपक्व हो जाए, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी चलन, तुम्हारी नेचर कैसी हो जाए, धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आने लगे। और जब आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते करते आध्यात्मिक पथ में, इस रूहानी राह में व्यक्ति इस तरह की मैच्योरिटी तक पहुंचता है, तब उसमें एक गुण प्रकट होता है और वो गुण है स्वीटनेस, और वो गुण है मधुरता। अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने कहा है मधुबन निवासियों से मुलाकात कि ये मधुरता का गुण किसका नाम बाला करेगा? मधुसूदन का नाम बाला करेगा। 85 की अव्यक्तवाणी है क्रिसमस की, क्रिसमस अर्थात किशमिश डे और किशमिश अर्थात मधुरता का दिन। मधुरता वह विशेषता है जिससे कैसी भी भूमि हो उसमें क्या होगा, बंजर भूमि हो, कठोर भूमि हो, वो बीज बोया जा सकता है। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य है 16 कलाओं से संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, और इसलिए भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हे मधुरता के ईश, हे मधुरता के देवता, हे मधुरता के स्वामी, तेरी हर बात, तेरी हर चीज, तेरा सब कुछ कैसा है, मधुर मधुर मधुर, जैसे गीत में सुना। ये गीत लिखा था वल्लभाचार्य ने। ब्रह्मा बाबा भी कौन से, वल्लभाचार्य के फॉलोअर थे, पुष्टि मार्ग जिसको कहते हैं, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। और शंकर वल्लभाचार्य इस सृष्टि चक्र में एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा का एक जन्म शायद वल्लभाचार्य का था। ये जो वल्लभाचार्य है ब्रह्मा ही होगा, क्योंकि वल्लभाचार्य द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद के थोड़े विरुद्ध थे। उनका मार्ग था भक्ति का, वो सन्यासी नहीं थे। सन्यासी तो होना चाहते थे, पर गुरु ने कहा था गृहस्थी बनो, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भक्ति भाव से केवल एक ही की भक्ति की, कृष्ण की, कृष्ण को ही देखना, कृष्ण की ही भक्ति, कृष्ण का ही बाल रूप, कृष्ण का ही सखा रूप, हर तरह से केवल कृष्ण कृष्णमय जीवन था। वैसे तेलुगु परिवार से थे, पर जन्म काशी में हुआ, पर वो समय वो था जब मुसलमानों का आक्रांतकारी रूप था भारत पर, कन्वर्शंस चल रहे थे, फोर्सफुल बदल रहे थे मुसलमान हिंदुओं को, तब कहीं जाकर उस समय उनका जन्म हुआ। इसलिए उनके पिता जो थे वो काशी से उनको चुपचाप लेके गए उधर बिहार चंपारण, और वहां उनका जन्म हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है कि उनके जो बहुत पूर्वज थे, दादा परदादा, उनमें से कोई एक, उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का कि जब तुम नौ यज्ञ पूरे कर लोगे, तुम्हारा वंश, तब मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूंगा। और ये जो इनके पिता होते लक्ष्मण भट्ट, इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे इनके आने तक पूरी वंश में, और तब उसकी मां को साक्षात्कार हुआ था, मतलब वल्लभाचार्य की, कि मैं आ रहा हूं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और बताया गया है कि आते ही, क्योंकि वो ट्रेवल किया उन लोगों ने, क्योंकि मुसलमानों के डर से वहां से 15वीं 16वीं शताब्दी भारत में औरंगजेब और ये सब लोग जब चल रहा था सब कुछ कन्वर्शंस, तब वहां से निकले तो वो जो बच्चा जन्म हुआ 2 महीने पहले ही हो गया, 7वें महीने में प्रीमैच्योर बेबी। जन्मने के बाद उसने कुछ आवाज नहीं की, लोगों को लगा मर गया। वो मां ने एक झाड़ के नीचे जाके रख दिया, और फिर उसको वो स्वप्न आया कि मैं आया हूं। और वो जाकर देखती है तो वो जो झाड़ है वहां वो बच्चा है, रो रहा है, और एक अग्नि चारों तरफ है, अग्नि का फेरा, और वो मां उस अग्नि से गुजरती और बच्चे को लेती है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसी कहानी है, कितनी सत्य है क्या है पता नहीं, परंतु ये वो छोटा सा बालक 7 साल की उम्र में शास्त्र पढ़ने चालू किए, और 1-2 साल में पूरा पारंगत हो गया। 11 साल की उम्र में था तब उसे उपाधि मिली बाल सरस्वती की, सबको हरा दिया, शंकराचार्य के फॉलोअर, माधवाचार्य के फॉलोअर, बौद्ध के फॉलोअर, इतना कुशाग्र तीव्र बुद्धि छोटा सा बालक। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में जो डिबेट हुई थी, इसने सबको हरा दिया था, इतना बख्शीश मिला था, इतना पर इसने सब फाड़ दिया था। 20 साल तक भारत की यात्रा की, अलग अलग जगह पर, सन्यासी जैसा जीवन था, गृहस्थी था परंतु वैरागी, और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, 84 प्रवचन दिए, जिसको अलग अलग जगह पर भागवत पर। तो ऐसी ये महान आत्मा द्वारा रचित जो गीत अभी हमने सुना वो है, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा है, जिसे 16 कला संपूर्ण कहा गया है, और वही हमें भी बनना है। अधरम मधुरम, हे कृष्ण, हे गोविंद, तुम्हारे अधर होठ कैसे है, मधुर। वदनम मधुरम, तुम्हारा चेहरा कैसा है, मधुर। नयनम मधुरम, तुम्हारे नयन कैसे है, मधुर। हसितम मधुरम, तुम्हारा हंसना कैसा है, मधुर। हृदयम मधुरम, तुम्हारा हृदय कैसा है? मधुर। गमनम मधुरम, तुम्हारा गमन करना, घूमना, चलना, फिरना कैसा है? मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम। तो होठ मधुबन निवासी अर्थात जिनके मुख से क्या निकले? मीठे बोल, अव्यक्त वाणी है बाबा की, जिसमें कई बार बाबा ने कहा है मधुबन से मुलाकात 9/11/69 अव्यक्त मुरली। मधुबन के निवासियों के दो विशेषताएं कौन कौन सी? मधु अर्थात मधुर था, वन अर्थात वैराग्य। तो तुम्हारे बोल भी कैसे हैं? मधुर। तो मधुर होठ अर्थात उनमें से क्या निकला हो? मधुर रस टपक रहा है, उसमें से शहद टपक रहा है। पर कोई कोई है जहां से विष भी टपक रहा है। तो सबसे पहले ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी धारणा बाबा ने कहा मधुरता है। जहां देखो वहां मधुरता ही। 18 जनवरी 1917 की अव्यक्त मारी 2017 की, जिसमें बाबा ने कहा देखो कितना बड़े संगठन है, देखो कितना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार आया हुआ है, यहां भी आए हैं, वो भी आया है, फलाना भी आया है, फलानी भी आई है। कैसा बेहद का परिवार है। यहां पर जहां देखो वहां मधुरता है। तो होठ अर्थात मुख से निकलने वाले शब्द कैसे हो? मधुर। चेहरा मधुर अर्थात चेहरे पर क्या हो? उदासी नहीं, दुख नहीं। अरे तुमको मिला कौन है? कल की वाणी में है तुम कैसे अमूल्य रतन हो, अविनाशी अमूल्य रतन हो। कैसे रतन हो? सारे दुनिया के रत्न, सारे दुनिया के खजाना एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हारा पलड़ा भारी है। तुम ऐसे अविनाशी रतन हो, तुम ऐसे अमूल्य रतन हो। तो तुम्हारे मुख में उदासी, तुम्हारे मुख पर उदासी, अवसाद, गम, गमगीन चेहरा, दुखी चेहरा, चिंतित चेहरा नहीं हो सकता। तो तुम्हारा मुख भी मधुर। तीसरा तुम्हारे नयन मधुर। क्यों नयन मधुर है? क्योंकि ये नयन क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में चिंतन किया था, भाई किसी बहन को देखे तो क्या देखे? नव रूप देखे उसके, वो ज्योति है परम धाम की, वो आत्मा भाई है, वो बहन है, वो बाल, वो सतयुग की देवी है, वो मंदिर की देवी है, वो बाल ब्रह्मचारिणी है, वो ब्रह्मा कुमारी है, वो माँ है, वो फरिश्ता है। एक बहन एक भाई को देखे तो क्या देखे? परमधाम की ज्योति है, पर सच्चा भाई है, मेरा भाई है, आत्मिक भाई है, लौकिक भाई, आत्मिक भाई और परमधाम की ज्योति क्या देखे? सतयुग का देव है, मंदिर का देव है, या तो बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा कुमार है, जो कितनी कुमारियों के, कितनी 700 ब्राह्मणों के समान है, या तो पूर्वज है, या तो फरिश्ता है। यही रूप देखे, यही स्वरूप देखे। तो तुम्हारे नयन कैसे है विनोद भाई? तुम्हारे नयन मधुर, क्योंकि नयनों में बाप समाया हुआ है, क्योंकि नयनों में उसकी याद समाई हुई है। कल की अव्यक्त वाणी पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1, आंखों में क्या है? वो गमनम मधुरम, गमनम तुम्हारा घूमना फिरना कैसा है? मधुरम, मधुरता का घूमना है। क्योंकि किस अवस्थाओं में, चाल कौन सी है? फरिश्तों की चाल है, देहभान वाली, देहात्मभान वाली चाल नहीं, देहबोध वाली चाल नहीं है। तुम्हारा चलना फिरना घूमना कैसा है? मधुर। हे मधुराधिपति अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, तुम जो बोलते हो, शब्द कैसे है? वचन। तुम्हारे शब्द कैसे हैं? मधुर है। किसी को हर्ट करने वाले, दुख देने वाले, गिराने वाले, निरुत्साहित करने वाले, मारने वाले, घायल करने वाले, आहत करने वाले ना हो। तुम्हारे वचन कैसे हैं? मधुरम। चरितम मधुरम, तुम्हारा चरित्र कैसा है? मधुर। आज की मुरली में है मीठे बच्चे, सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। पवित्र धाम कल की अव्यक्त वाणी, पवित्र धाम, परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की सृष्टि तुम पर पड़ी है, तो क्या हो गया, तुमको याद आई है पवित्रता की। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, तुम्हारा चरित्र कैसा है, मधुर। क्यों मधुर है, क्योंकि उसमें प्यूरिटी है। जहां प्यूरिटी है वही मधुरता है। संसार में कितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व हो, परंतु वहां प्यूरिटी नहीं है, इसलिए चरित्र भी नहीं है। एक है कैरेक्टर, एक है पर्सनैलिटी, एक है कैरेक्टर, दोनों में क्या अंतर है? एक है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, एक है चरित्र। चरित्र और व्यक्तित्व में क्या अंतर है?
पर्सनैलिटी कोई विशेषता हो सकती है, जैसे कोई कला है, कोई
विशेषता। अब्राहम लिंकन ने कहा है पर्सनैलिटी छाया है और चरित्र झाड़ है। पर्सनैलिटी तो केवल छाया है, कैरेक्टर इज द ट्री, पर्सनैलिटी इज मियर अ शैडो, उसका केवल एक परछाई है बस। पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, कोर्सेस है संसार में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, वहां जाओ तो कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, भाषण कैसे देना, भाषण की कला, बोलने की कला, रिलेशनशिप की कला, हाथ कैसे मिलाना, ऐसे मिलाना, ऐसे मिलाना, सॉफ्ट स्किल्स, 10 प्रकार की सॉफ्ट स्किल्स, वो सब कुछ सिखाया जाता है वहां पर, वो सिखाया जाता है। पर भगवान पर्सनैलिटी बनाने नहीं आया, भगवान किस लिए आया है, कैरेक्टर सुधारने आया है। हां, अगर पर्सनैलिटी बनाने आए तो रूहानी पर्सनैलिटी बनाने आया है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, तुम्हारा वसन, तुम्हारे जो वस्त्र है, वसनम मधुरम, कैसे है तुम्हारे वस्त्र, पवित्र। तो हमारे वस्त्र भी कैसे होने चाहिए, पवित्रता से लबरेज युक्त, पवित्रता से भरपूर। ऐसे वस्त्र ना हो जो किसी को हमारे पीछे दीवाना ही बना दे। वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वलित अर्थात पोश्चर, भाव भंगिमा, तुम्हारा ये तिरछा खड़ा होना भी मधुर है, कृष्ण के लिए कह रहे हैं वल्लभाचार्य। सब कुछ तुम्हारा मधुर है, ये भक्त की भावना है, कितनी डूब गई है आत्मा उसके प्यार में, इष्ट के प्यार में इतनी डूब गई है कि उसको सब कुछ मधुर ही मधुर लगता है। जब वल्लभाचार्य की उम्र 52 हो गई थी, उन्होंने सोचा अब बस हो गया, जीवन के अंतिम 7 दिन सबसे अपने आप को अलग कर लिया और निरंतर कृष्ण याद, कृष्ण विरह, कृष्ण प्रेम, कृष्ण पीड़ा में जलते रहे, और उसी अवस्था में याद में, कृष्ण की याद में शरीर छोड़ा लास्ट 7 दिन। वसनम मधुरम अर्थात तुम्हारे कपड़े भी कैसे हैं, मधुर अर्थात प्योर, ऐसे कपड़े ना हो तड़क भड़क वाले, मायावी, विकारी। यहां का डांस कैसा है, अव्यक्त मुरली, डेंजर डांस, मुरली थी ना, डेंजर डांस, परसों की मुरली। ये चोला कैसा है तुम्हारा, आसुरी, ये दुनिया भी आसुरी है, तुम्हारा चोला भी आसुरी है। शरीर कहां पड़ा हुआ है, वैश्याले में, विषय वैतरणी नदी में पड़ा हुआ है, अगर श्रीमद तोड़ा तो रसातल में चले जाएंगे। तो वसनम मधुरम, तुम्हारे वस्त्र कैसे हो, मधुर। वलितम मधुरम, तुम्हारा खड़े रहना, भाव भंगिमा, पोश्चर कैसी हो, मधुर। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, तुम जब चलते हो मधुर, जब तुम भ्रमण करते हो वो भी मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वेनुर मधुरा, रेनुर मधुरह, पाणी मधुरह, पादो मधुरो, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तुम्हारी जो वेणु है, मुरली, मुरली कैसी है तुम्हारी, मधुर। तो तुम्हारी मुरली भी मधुर होनी चाहिए। जैसे बाप की मुरली मधुर है, वैसे तुम्हारी मुरली भी कैसी होनी चाहिए? मधुर। अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा या मास्टर मुरलीधर है। हमारा चिंतन भी मधुर, हमारा मुरली का इंटरप्रिटेशन, मुरली के शब्द, मुरली का जिस ढंग से हम समझा रहे हैं वो भी मधुर। वेणु मधुरा, रेणु मधुर, तुम्हारे चरण रज, तुम्हारे चरणों से रज जो उड़ रही है वो भी कैसी हो? मधुर। अर्थात तुम जहां जाओ वो भूमि पावन हो जाए, जहां कदम रखो वो भूमि पवित्र हो जाए, ब्राह्मण के पैर जहां जहां पड़ेंगे वहां कल्याण हो। भावना से ही जाना है कि जहां मैं कदम रखूंगा वहां क्या हो जाएगा? अलौकिक आतिशबाजी। रेणु तुम्हारे कदमों से उठनी हुई रज कन मधुर। रामायण में दिखाया है शिला बनी बैठी है अहिल्या, राम जी क्या करते हैं? पैर लगाते हैं क्या? टकराते हैं? कुछ भी नहीं करते। कोई कोई कथाकार कहते हैं केवल चरणों की धूली उड़ी और वहां लगी, लगाना तो बहुत बात की बात है। चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर, विश्वामित्र कहते हैं कृपा करो, चरण रज चाहती, बस तुम्हारे चरणों की धूली तो पत्थर क्या बन जाए? चैतन्य। पत्थर बुद्धि क्या बन जाए? पारस बुद्धि। कल की मुरली में कहा है बाबा ने पारसनाथ, पारस बन जाती है आत्माएं। तो तुम्हारे चरणों की रज कैसी हो? मधुर, अर्थात पवित्र, आत्माओं को पवित्र बनाने वाली। पाणी मधुर हो, तुम्हारे जो हाथ है वो भी मधुर, अर्थात इन हाथों से कोई अपवित्र कर्म ना हो, ये हाथों से कोई पाप कर्म ना हो, ये हाथ हमेशा पुण्य कर्म ही करे। शरीर के विरुद्ध भी इंसान ना हो इस शरीर से। विकार में स्वयं को डालने के निमित्त ये हाथ ना बने, इन हाथों को भी पवित्र करना है। पवित्र कैसे होंगे हाथ? नहीं, अभी यहां बैठे बैठे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, मुरली लिखना, पॉइंट्स लिखना, क्लास लिखना, ये सबसे बेस्ट है। हाथों को पवित्र करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? मुरली लिखना, समान लिखना, भोजन परोसना, वो भी हो गया, हाथ से जो भी टोली देना। योगयुक्त हाथ मिलाना, अपने वाइब्रेशंस दूसरों को देना, हाथों में एनर्जी हो, हीलिंग एनर्जी, प्योर एनर्जी। हाँ, भगवान के हाथ पकड़ के रहना तो किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल देना, बस देना अर्थात पुण्य, लेना अर्थात न्यूट्रल। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है, देते रहना, देते रहना, देते रहना, हरण कर लेना दुखों को। तो पाणो पाणी मधुर हो, तुम्हारे हाथ कैसे हो? मधुर, अर्थात इन हाथों से मधुरता के कर्म हो। पादो मधुर हो, तुम्हारे पैर कैसे हो? मधुर, अर्थात पैर ऐसी जगह लेके ही नहीं जाना है जहां अपवित्रता है, ऐसे जगह रखना है पैरों को जहां पर अपवित्रता है, जहां इंप्यूरिटी है वहां लेके नहीं जाना है। सिनेमा हॉल ऐसी संसार की जगह जहां पवित्रता है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है कैसे वो बच गए और कैसे भगवान का शुक्र मनाया। वो उनका वो मित्र जो बहुत शक्तिशाली था और उसके साथ विदेश की घटना, ये तो भारत में, विदेश में भी ऐसे ही वो दिखाया है। वो कैसे गए और वो वेश्या वहां बैठी थी और एकदम से उनको पसीना आ गया और वो निकल के वहां से आ गए और फिर कहा कि हे राम, निर्बल के बलराम, उसी ने मुझे बचाया। वर्णन किया है पूरा अपनी जीवन कहानी में। तो अपवित्र स्थान, अपवित्र जगह, ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं है। और स्थान को इंग्लिश में कहते हैं साइट, SITE. एक है स्थूल स्थान, एक है इंटरनेट का स्थान, वेबसाइट, वो भी स्थान ही है. एक है स्थूल और एक है ये वर्तमान वाला, इसको भी साइट ही कहते हैं. तो पादो मधुरा, अपने पैर को उस तरफ ले जाना मतलब कब्र में डालना. पैर इधर मोबाइल, मधुरा अधिपते. फिर नृत्यम मधुरम, तुम जो नृत्य करते हो, कौन सा नृत्य करते हो? ज्ञान डांस. तुम्हारा ज्ञान डांस जब होगा तो ही वो मधुर होगा. संसार का डांस होगा तो डेंजर डांस होगा. इसके लिए डांस करो, करते हैं फेस्टिवल्स पर ब्राह्मण, पर कभी ऐसे डांस करते हैं कि उसमें अलौकिकता जरा भी नजर नहीं आती. विदेशियों के डांस देखा, कितनी अलौकिकता. वो रशियन आकलते कल्चर प्रोग्राम करते, उनके कल्चर प्रोग्राम और हमारे कल्चर प्रोग्राम मधुबन की भूमि पर. चांस की बात नहीं है, यहां हम बात कर रहे हैं वो भाव की, अलौकिकता की, दिव्यता की. दिव्यता होती है बहुत ज्यादा. हमारे थोड़े ज्यादा ही मॉडर्न एग्रेसिव, ज्यादा बढ़ जाती है. पर वो देखा है ना रशियन बहनों के डांस जो होते हैं, कितनी रॉयल्टी होती है, कितनी अलौकिकता होती है उसमें. ड्रेस कैसे होते हैं, हमारे ड्रेसेस बदलते रहते हैं, आज अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ. एंजेलिक होता है उनका. तो नृत्यम मधुरम, तुम्हारा नृत्य भी करने वाले कोई है इधर स्टेज पर? करते हैं ना कन्याएं छोटी छोटी, या भाई भी करते हैं कोई कोई. अच्छा, तो नृत्य भी करना है. स्थूल नृत्य तो अलौकिक हो, उसमें लौकिकता ना हो. वेशभूषा भी हो वो मर्यादा युक्त हो. अगर ड्रेस करना है सारे ब्राह्मणों के सामने, इतने सारे भाई बैठे हैं, किस तरह का ड्रेस पहन रहे, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे मधुबन चाहे सेवा केंद्र. ड्रेस अलौकिक हो, भाव भंगिमा अलौकिक हो, नृत्य अलौकिक हो, वो देखने के बाद किसी की बुद्धि चलायमान ना हो, वो देखने के बाद किसी में काम का भाव उत्पन्न ना हो, वो देखे तो उनको लगे फरिश्ते डांस कर रहे, तो ही वो अलौकिक डांस है, नहीं तो पाप के खाते में जा रहा है. वो भी इतनी बड़ी स्टेज पर डांस किया और सबके मन में हलचल हुई तो क्या कहेंगे, पाप हो गया ना. नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारी मित्रता कैसी है? बहुत मधुर. और संसार में सबसे अच्छी मित्रता किसकी है? भगवान की. और उससे अधिक मधुर मित्रता हो ही ना. तो इस अर्थात हमारे जिनकी हमसे मित्रता है, वो हमारी मैत्री भी पवित्र मैत्री हो. उस मैत्री में देह देहभान ना हो. जितने हमारे मित्र है उसमें लौकिकता ना हो, हमारे जो फ्रेंड्स है उसमें लौकिकता ना हो. गीतं मधुरम पीतं मधुरम भुक्तं मधुरम सुप्तं मधुरम रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। तुम जो गीत गाते हो वो मधुर है, क्योंकि तुम्हारे गीत कौन से हैं? परमात्मा प्रेम के, परमात्मा याद के। तुम्हारे मुख से विकारी गीत कभी निकल नहीं सकते, दुख के गीत नहीं निकल सकते। हाय ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। संडे की मुरली, कल की विदेशियों से मुलाकात, पार्टियों से मुलाकात वन, बाबा ने कहा ये सब क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या क्यों, कैसे, माया क्यों आई, मेरे पास ही क्यों आई, सोचो नहीं, फुल स्टॉप। ये गीत तुम नहीं गा सकते। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, तुम जो पीते हो वो भी मधुर है। क्या पीते हम? अमृत, ज्ञान का अमृत। विष काहे को खाए, बीच बीच में विष भी पी लेते। अमृत पीना है, परमात्मा प्रेम का अमृत, ज्ञान का अमृत। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, तुम जो खाते हो भुक्तम वो भी मधुर, सुप्तम तुम्हारा सोना भी मधुर। हमको सोता हुए कोई देखे तो क्या लगे उसको? कोई योगी सो रहा है। और कोई कोई तो ऐसा सोते आड़ा टेढ़ा, किधर से सोते और किधर से उठते हैं पता ही नहीं चलता है, पूरा परिक्रमा कर लेते। हम उठे तो बिस्तर वैसा ही हो जैसा सोने के पहले था, योगी हो जैसी नींद हो। देखने वाले को लगे कोई फरिश्ता योगी सो रहा है, स्मित मुस्कान। वैसे हमारे हाँ हाथ में नहीं होता है, परंतु योगी सा सोना। और हमारी किस सोने की वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, जो भी फिर भी खाना मधुर, भुक्तम मधुरम। जहां भोजन संयमित है वहां मधुरता है, जहां भोजन अनियंत्रित है वहां मधुरता नहीं है, वहां रोग है, बीमारियां है। और योगी अगर बार बार बीमार पड़ते रहे तो लोग कहेंगे तुम योगी हो और बार बार फिर भी बीमार पड़ते हो, उससे तो अच्छा हम रहे भोगी। सब खाते हैं, सब कुछ करते, बाहर का भी खाते, हॉस्टल रेस्टोरेंट में जाते और कभी बीमार भी नहीं पड़ते। ऐसा ही ताना हमको किसी ने दे दिया तो मतलब तुम लोग अपना खाते हो, अपने हाथ का बनाते हो और बार बार बीमार पड़ते रहते हो, और हमको हॉस्पिटल लेके जाने वाले वही है जो सब तरफ का खाते है, तो फिर क्या रही हमारी? हम अपने आप के बचाव के लिए कुछ नहीं कह सकेंगे। तो योगी अर्थात खाना मधुर, सोना मधुर, रूपम मधुर, तिलकम मधुर, तुम्हारा रूप भी मधुर, क्योंकि ये रूहानी पर्सनैलिटी है। तिलक भी मधुर है, स्वमान का तिलक निरंतर लगा हुआ है। स्वमान, तुम अभी स्वमान में रहते तो तुम्हारा यादगार रूप में उधर गाया जाएगा। परमात्मा दृष्टि तुम पर पड़ी है, संडे की मुरली, तुम्हारा यादगार गाया जाएगा उधर। करणम मधुरम तरणम मधुरम, मतलब तुम्हारा जो कुछ करना है तुम्हारे हर कर्म मधुर हो, अर्थात श्रीमत अनुसार हो। तरणम तुम्हारा तैरना भी मधुर, हरणम मधुरम तुम्हारा हरण करना भी मधुर, तुम्हारा स्मरणम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा शांत रहना दोनों ही मधुर है। वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गुंजा मधुरा, तुम जो गुंजन करते हो, गुनगुनाते हो, एक है गाना, एक है बोलना, एक है गुनगुनाना। तुम्हारा गुनगुनाना भी कैसा है? इरिटेटिंग नहीं है? नहीं तो हम गुनगुना रहे हैं और दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। आजकल योग में लोग कान में वो डालते हैं ईयरफोन, कमेंट्री सुनते हैं या क्लास सुनते हैं योग के समय, और वो क्लास की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है, गुन 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 गुन, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। कम से कम ईयरफोन बदलो, एटलीस्ट अच्छे वाले ले लो जिससे खाली तुमको सुनाई दे। योग एक व्यक्ति कर रहा है मतलब क्लास, और डिस्टर्ब सारे योग करने वाले हो रहे हैं उसकी वजह से। तो गुंजा मधुरा, माला मधुरा, तुमने जो माला पहन के रखी है, कौन सी माला पहननी है? हमने बहुत सारी माला है हमारी, तो मालाओं की लिस्ट हो सकती है, हमने कौन कौन सी माला है। एक बार क्लास भी हुई थी गारलैंड्स, पूरी एक अव्यक्त वाणी थी, तब यहां पर चर्चा की थी। लंबी माला की लिस्ट है जो हो सकती है। माला यमुना मधुरा, ये नदियां है, नदी जिसमें खेल रहा है श्री कृष्ण, वो नदी भी मधुर है। वीची मधुरा, वीची अर्थात तरंगे भी मधुर है उसकी। सलिलम मधुरम, सलिल अर्थात पानी, सलिल उसका जो पानी है वो भी मधुर। कमलम मधुर, उस पानी में खिला हुआ कमल भी मधुर। अर्थात हम जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है सब कुछ मधुर हो। अर्थात कमरा कैसा है, अचानक कोई आ जाए कमरे में जूते कहां रखे हुए हैं, अलमारी कैसी है, चीजें कहां रखी हुई है, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है या ठीक ठाक है अपनी जगह पर। कोई चीज ढूंढने लगे तो पता ही नहीं चलता, पूरा कमरा ढूंढना पड़ता है एक चीज के लिए, क्योंकि कहां रखी है वही पता नहीं, तो मधुर नहीं हुआ ना। गोपी मधुरा, अर्थात कृष्ण जिन गोपियों के साथ खेल रहे वो गोपियां भी मधुर है। लीला मधुरा, जो लीला कर रहा है वो भी मधुर है। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, जब गोपियों के साथ युक्त है तब मधुर है, जब उनसे मुक्त है अर्थात अलग है तब भी मधुर है, वो मिस नहीं कर रहा है उनको, सबके साथ है प्यारा और तुरंत न्यारा, उसकी आंतरिक स्थिति में फर्क नहीं है। छोड़ के जब जाना जा गया तो ऐसा गया कृष्ण दिखाया है गोकुल से, बाद में कभी भी किसी गोपी से नहीं मिला, ना ही कभी किसी को याद किया। जब उनके साथ था तब वो पार्ट था, आगे बढ़ा दूसरा पार्ट चालू हो गया, और आगे बढ़ा तीसरा पार्ट चालू हो गया युद्ध का, इधर कंस का, मथुरा, द्वारिका, गोकुल, तीनों जगह तीन अलग अलग पार्ट। यहां का पार्ट पूरा हुआ अब यहां पहुंचे, यहां का पार्ट पूरा अब यहां, अब यहां आने के बाद वो सुदामा सांदीपानी के आश्रम में कृष्ण से कहता है, कृष्ण मैंने आप तुम्हारी बांसुरी कब से नहीं सुनी। कृष्ण कहता है, अब बांसुरी बजाने वाला कृष्ण गया, उसका पार्ट पूरा हो गया, वो गोकुल में था, अब कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई क्योंकि पार्ट उधर था, वो पूरा हो गया, बाद में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना कि तब वो पार्ट था अब ये पार्ट है, उसको मिस करते रहना, वो पुराने दिन कब आएंगे, वो पुराने दिन कब आएंगे, तब मेरा कितना अच्छा पुरुषार्थ चालू था, अब क्यों नहीं हो रहा है, तब वो दिन बहुत अच्छे थे, वो अलग चीज है बचपन के दिन भुलाना, परंतु दुखी हो रहे पास्ट में, अतीत में, माजी में जी रहे, मुस्तकबिल सामने खड़ा है, फ्यूचर की कोई उसको नहीं देख रहे, केवल पीछे अतीत में जीना, लाशें ढो ढो के चल रहे शंकर जी जैसा, पार्वती की लाश को 6 महीना घूमते फिर रहे, यहां पर भी घूम रहे। हाँ तो वो थोड़ा पहले है उसमें, तो वो पार्ट पूरा हो गया। तो युक्तम मधुरम और मुक्तम मधुरम, जब साथ में है तब भी मधुर, जब साथ में नहीं है तब भी मधुर। मधुरा दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, तुम्हारी दृष्टि भी मधुर है और तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारा डिसिप्लिन्ड लाइफ भी मधुर है। वो दिखाया है कृष्ण की 16,000 रानियां, और एक प्रसंग ऐसा आया कि वो किसी को भेजता है उधर मथुरा गोकुल में, और कहता है कि नदी से कहना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे जमुना मुझे राह देना। वो कहता है तुम और ब्रह्मचारी, तो 16,000 रानियां 108 ब्रह्मचारी कहां से हुए। तो वो व्यक्ति जाता है और वो यमुना से कहता है अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे राह देना, यमुना राह दे देती। वो सबके बीच में है परंतु डिटैच्ड है, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। पर दृष्टि मधुरा त्रिष्टि मधुरम मधुराधिपते अखिलम गोप, गोपा मधुरा गावो मधुरा, तुम्हारा जो गोप है, पहले कहा गोपी अभी बॉय, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गोपा मधुरा गावो मधुरा, तुम्हारा गाना भी मधुर। यष्टि मधुरा, यष्टि अर्थात तुम्हारी जो छड़ी है, गावो अर्थात गाय, सॉरी गोपा मधुरा और तुम्हारी जो गाय है वो भी मधुर। यष्टि मधुरा, यष्टि अर्थात जिस छड़ी से तुम उनको हाँकते हो वो भी मधुर। सृष्टि मधुरा, जो सृष्टि तुम्हारी है वो भी मधुर। दलितम मधुरम फलितम मधुरम, दलित मतलब तुम जो विनाश करते हो, संहार करते हो, और उसका जो फल है फलितम मधुरम, उस विनाश का जो फल है वो भी मधुर है। भगवान इस संसार का विनाश करने आता है और उसका जो फल होगा सतयुग वो भी मधुर। मधुराधिपते, अखिलम मधुरम, ऐसे ये आठ है, आठ श्लोक कहेंगे। इसलिए तो कहते हैं उसको, क्योंकि वो आदम खुदा के जैसा है, उसने कर्म ही ऐसे श्रेष्ठ किए हैं कि अंतिम जन्म में भी ब्रह्मा का इधर कितना गायन हुआ। क्योंकि ये जन्म किसकी महिमा है, ये ब्रह्मा की महिमा है। ऐसी महिमा क्यों हुई भक्ति मार्ग में, इतना उसको मधुराधिपति बना दिया भक्तों ने द्वापर से, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने अभी कर्म ऐसे किए, इसलिए तो वो आत्मा इतनी श्रेष्ठ नंबर वन जाकर बनी सतयुग में। तो हमें भी क्या करना है, ऐसी मधुरता अपने जीवन में लाना, ये मधुरता का की संस्कृति निर्माण करनी है। दिस इज द कल्चर ऑफ स्वीटनेस, ये नई संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? मधुरता की संस्कृति है, जो मधुसूदन का नाम बाला करने वाली है। बाबा के कुछ महावाक्य है, 25 दिसंबर की मुरली 85, सभी विशेष क्रिसमस डे मनाने आए हो ना, बाप दादा किसमिस डे कहते हैं। किसमिस डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज्यादा खाते और खिलाते हैं, मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठे बन जाए तो सदा ही मुख से मधुर बोल बोले। जैसे मीठा खाना और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरों को भी खुश करता। तो इससे सदा सर्व को मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म। यह किसमिस डे मनाया है, मनाना अर्थात बनना। किसी को भी दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोलो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर दो। इन दो घड़ी की मीठी दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल दे। यह दो मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। अभी सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल थे ना, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो, यह दो मधुर बोल ने बदल दिया ना, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसी ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, यह मुख मीठा करो। समझा? समझा? क्रिसमस डे मनाए, किस क्रिसमस डे? सदा इस सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली, सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना, इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनना। ओम शांति।